ओम शांति। तो आज के प्रश्नोत्तरी सत्र में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हम सभी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय सूर्य भाई जी। भाई जी का हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सूर्य भाई जी उस चमकते हुए सूर्य के समान हैं जो विश्व के हजारों लाखों आत्माओं को सत्य ज्ञान देकर, सत्य ज्ञान की रोशनी देकर के उन्हें नया जीवन दिया है। और मैं देखता हूं कि आपके अंदर वो विशेषता है कि आप हरेक की विशेषताओं को देखते हैं और उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं, साथ ही साथ उसकी विशेषताओं को याद दिला करके उसको विशेष आत्मा बना देते हैं। और आपके लिए बाप दादा पहले से ही आह्वान किया करते थे कि एक समय आएगा जब भंडारे के अंदर हमारे योगी बच्चे आएंगे, योग युक्त होकर भोजन बनाएंगे। तो वो आप विशेष आत्मा हैं और आप ऐसी महान आत्मा हैं कि आपके दिल में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, हर आत्मा आगे बढ़े, हर आत्मा तीव्र पुरुषार्थी बने, हर आत्मा योगी बन जाए, बाप समान बनकर के बाबा को प्रत्यक्ष करे, आपके अंदर ये भावना हमेशा रहती है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी जो हम सभी के आदर्श मूर्त हैं, उदाहरण मूर्त हैं और प्रेरणा के मूर्त हैं, आज हमारे बीच हैं। तो हम ज्यादा समय ना लेकर के, समय की सीमा है, तो और बीच में अभी कोई प्रश्न नहीं लाएंगे, प्रश्न बहुत आ गए हैं, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई जी, किसी ने इसमें से लिखा है कि हम ज्ञान सरोवर आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर योग की अनुभूतियां हुई, लेकिन मैं चाहता हूं कि जाने के बाद भी जब हम लौकिक घर जाते हैं, कार्य क्षेत्र में रहते हैं, तो ये अनुभूति होती रहे, तो उसके लिए कुछ हमें मार्गदर्शन कीजिए।
ओम शांति। ये तो यहाँ के वाइब्रेशंस का प्रभाव है, हम लोगों को भी इसका अच्छा अनुभव है, यहाँ से शांति बन जाते हैं। मुझे तो जाना ही पड़ता है, योग भी वैसा ही लगता है जैसे यहाँ लगता है, पर अनुभव अलग रहते हैं। यहाँ के शीतल, ठंडी हवाएं भी और शीतल मन भी अनुभवों में निखार सला देता है। योग अभ्यास के लिए कूल माइंड, ठंडा दिमाग बहुत आवश्यक है, जो यहाँ सहज हो जाता है। जब आप वहां जाएं, मैंने पहले दिन भी कहा था, यहीं से एक प्लानिंग बना लें कर्म योग की, कुछ अभ्यास चलते रहें। सबके पास समय बहुत होता है, हम ये नहीं मानते कि समय नहीं है। मैंने बहुतों को देखा जो कहते हैं समय नहीं है, वो समय की ठीक से प्लानिंग नहीं करते, वो खाली होने की इंतजार करते हैं तब योग लगाएंगे। कर्म योगी बने, घर से काम पर चलेंगे, क्या अभ्यास करके चलेंगे, नियमों में अपने को बांधना चाहिए। आप बाइक पे जाते हैं, रास्ते में आपको आधा घंटा लगता है, इस आधे घंटे में ये अभ्यास करेंगे। ऑफिस में जाते हैं, सर्टेन काम आपको हैं, उनमें ये अभ्यास करेंगे। छोटे अभ्यास जोड़ लें, पानी पीते हैं दो बार ये संकल्प करेंगे, तो एक निरंतरता, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, ये आवश्यक होती है अनुभवों को कंटिन्यू करने की। ये योग का मार्ग ऐसा ही मार्ग है जिसमें प्रैक्टिस का सबसे ज्यादा महत्व है, अभ्यास। जो जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं वो उतने ही गहन अनुभव करते हैं। तो स्वयं अपने को जानते हुए हम क्या कर सकते हैं अपनी दिनचर्या में, अपने गृहस्थ में, उस अनुसार एक छोटा सा प्लान बनाना। प्लान ये नहीं आप 10 पॉइंट का बना लो और बड़ा स्ट्रिक्ट प्लान कर दो, यहां से जाते 3 बजे उठेंगे रोज, फिर सोएंगे नहीं, और 3 दिन उठो, चौथे दिन जब सिर दर्द होने लगे तो 6 बजे ही उठना शुरू करो। ऐसी प्लानिंग नहीं करनी है। प्लानिंग के लिए एक शब्द याद करेंगे, सिंपल एंड प्रैक्टिकल। जो बहुत सिंपल हो, जो किया जा सके, प्रैक्टिकल माना जो किया जा सकता हो, जो लगातार किया जा सकता हो, और उस प्लानिंग को हो सके तो हर 15 दिन में चेंज कर लेना, दूसरे अभ्यास जोड़ लेना। सबसे अच्छे अनुभव होंगे आप 15-15 दिन की प्लानिंग करें, 3-3 पॉइंट्स की करें, सिंपल एंड प्रैक्टिकल करें, तो आपका अभ्यास निरंतर, अनुभव और अभ्यास आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि योग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें माइंड बोर भी होता है। अगर आपके पास अच्छे मनोरंजक तरीके नहीं हैं, आप उनमें ज्यादा अभ्यास नहीं करते, तो धीरे धीरे माइंड बोर होकर अभ्यास छोड़ देता है। नाता जोड़ना है बाबा से, बाबा को यूज करना ताकि बाबा के अच्छे अनुभव होते रहें। यूज करना ये एक बहुत बड़ी कला है, तो अच्छा होता जाएगा।
ठीक है, प्लान भी सुनना है। कौन सा प्लान? कोई उदाहरण के तौर पर प्लान।
आप एक प्लान बना लो कि हमें अगले 15 दिन हम 4 बजे उठेंगे, ये अभ्यास करेंगे, 500 रूपों का अभ्यास करेंगे, बीज रूप करेंगे, सकाश देंगे, रूढ़ियान करेंगे। ऐसे नहीं उठे योग में बैठे आंख बंद करके सोने लगे जल्दी। एक प्लानिंग करो सवेरे की भी, रूढ़ियान भी करेंगे, सूक्ष्म वतन में भी चलेंगे, वरदान भी लेंगे, सकाश भी देंगे, बीज रूप भी करेंगे, फिर 2 स्वमान ले लो 15 दिन के लिए। हम ये 2 स्वमान अभ्यास करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ, इस देवी हूँ, इस देव हूँ। तीसरा अभ्यास ले लो, भोजन बनाते और खाते, यही अभ्यास करेंगे लगातार। ऐसे 3 अभ्यास ले लो, बस करो उसको। फिर आप देखो 10 दिन में अब मन उनसे बोर सा होने लगा, चेंज कर लो। मन बोर अवश्य होगा, ये बात भूलना नहीं। आप कह सकते हैं योग में मन क्यों बोर होगा? होगा, इसलिए चेंज करना। इस तरह 3-3 पॉइंट के प्रॉब्लम, कभी आपने ले लिया हम संतुष्ट रहेंगे अगले 15 दिन, कभी ले लिया हम बहुत खुश रहेंगे, कभी ले लिया हम दूसरों को देखेंगे ही नहीं, कभी ले लिया हम व्यर्थ बोलेंगे नहीं। अपने अवगुणों की और सद्गुणों की लिस्ट बना लो, अवगुणों की भी, मेरे में कौन कौन सी कमी है, ये जानना भी जरूरी है। उनको 15-15 दिन ले लो, भाई 15 दिन मैं पर चिंतन नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए 15 दिन मैं आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करूंगी, ऐसे।
बहुत सुंदर। तो एक माता जी लिख रही हैं भाई जी कि मैं और मेरे बच्चे 10 साल से ज्ञान में हैं। मैं बाबा की याद में भोजन बनाती हूँ और बाबा को भोग स्वीकार करा के ही बच्चों को खिलाती हूँ, पर बच्चे मुरली में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, मुरली में योग में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। मैं बच्चों को रेगुलर सकाश भी देती हूँ फिर भी उन पर असर नहीं पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि वो श्रेष्ठ योगी बन जाए, क्या करूँ?
इच्छा तो बहुत सुंदर है, हर माँ यही चाहेगी, उसके बच्चे क्यों इधर उधर जाएं। पर बच्चों पर आपका प्रभाव नहीं पड़ रहा, कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों का प्रभाव पड़ रहा है, जो कलयुग की माया चल रही है, फोन उसका प्रभाव पड़ रहा है। मैं सभी माताओं को विशेष रूप से कहूंगा, कुछ चीजें स्वीकार करनी ही पड़ेंगी। आपकी श्रेष्ठ भावना तो प्रशंसनीय है, पर बच्चों की जैसे जैसे यंग एज आती है, मैं स्पष्ट बता देता हूं, उनके अंदर काम वासना बढ़ने लगती है। कलयुग का प्रभाव, चारों ओर काम की आग जल रही है, उससे आज के युवक अछूते नहीं रहते, लड़के लड़कियां सब उसकी ओर अट्रैक्ट हैं। इसलिए ज्ञान और योग की रुचि कम हो जाती है। जॉब कर रही हैं, भोजन अच्छा, भोग लगा के देना, सकाश देना, ये करते रहें, फिर उनका अपना भाग्य भी है, साक्षी भी होना पड़ेगा। हल्का करो अपने को, जो हम चाहते हैं वही वो करें, ये हर केस में संभव नहीं होता है। मैंने आपको थोड़े में स्पष्ट बता दिया, कलयुग के वासनाओं का प्रभाव यंग जनरेशन पर बहुत ज्यादा है। हजार में से एक ही है जो बचा रहता है, बाकी नहीं। आपके बच्चे कॉलेजों में जाते हैं, प्योर रहना उनके लिए अति कठिन है आजकल, बस इतना ही समझ लें आप।
जी भाई जी, भाई जी, तीन चार लोगों का एक ही प्रश्न है कि योग करने के समय नींद आती है, बाकी समय नहीं आती, जब योग में बैठते हैं उसी समय नींद आती है।
सो लिया करो, क्या है, सुख भरी नींद आती है ना बाबा की गोद में।
तो साथ में ये भी लिखा है कि हम निंद्रा जीत कैसे बने, और योग में नींद आती है उसका कारण क्या है और निवारण।
जिनको जो योग में नींद के प्रोफेशनल हैं, कई हैं, एक मिनट का भी ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा ना, सोना शुरू कर देंगे। कुछ कारण है इसके, आप बुरा ना मानो तो बता दूं, जानकी दादी से हम सुनते थे, कभी हमें भी नहीं पता होता था। जिनके दिमाग पर सूक्ष्म पाप कर्मों का बोझा है, जिनके दिमाग पर कोई ना कोई प्रेशर है जिंदगी का, जो खुश नहीं है जीवन में, सूक्ष्म पाप हो गए हैं, बददुआएं लोगों की ज्यादा ली हुई हैं, उनके सामने ये परिस्थितियां आती हैं। इससे आप निराश नहीं होंगे कि हमने तो बहुत पाप कर लिए, हमें तो नींद आती है, अब हमारे पापों का क्या होगा, सोचते हैं ना, योग भी नहीं लगेगा, पाप भी ज्यादा हैं, तो आखिर होगा क्या हमारे साथ। 10-10 मिनट बैठ कर कुछ बार योग करें, घूमते फिरते योग करने की प्रैक्टिस करेंगे। और एक छोटी सी चीज बता रहा हूं आपको, दिन में 2 बार सवेरे शाम कभी भी संसार की सभी आत्माओं को दुआएं दो। माताएं तो दुआएं देना जानती हैं ना, जैसे अपने बच्चों को देते हैं। संसार की सभी आत्माएं सुखी हो जाएं, निष्पाप हों, सभी के देवत्व जागृत हों, दुआएं देंगे सबको। दूसरी चीज, क्षमा याचना। मैंने इस जन्म में या पूर्व जन्म में जिनको भी कष्ट पहुंचाया हो, दिल दुखाया हो, मैं हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा चाहती हूं, चाहता हूं, आप शांत हो जाओ, सुखी हो जाओ, इतना ही बस। रोज ये 2 काम करेंगे, 2 मिनट के हैं, 2-3 मिनट इसमें लगाएंगे, बोझ हल्का होगा। लेकिन जीवन ऐसा जीना है, प्रेशर न हो दिमाग पर। संबंधों में आजकल कड़वाहट बहुत है, सुखदाई संबंधों की तो खोज हो गई है संसार में, बहुत बिगड़ाव आ गया है 10-15 सालों से ही। भारत की कल्चर बहुत महान थी, लेकिन जब से वेस्टर्न कल्चर, ये अंग्रेजों की सभ्यता भारत में घुसी है, एजुकेशन भी बहुत बढ़ी, लेकिन एजुकेशन ने मनुष्य को विनम्र नहीं बनाया है, अहंकार बढ़ा दिया है। डिग्री तो दे दी है, विवेक नहीं दिया है, इससे संबंधों में खींचातान बहुत है, उसका प्रेशर रहता है। इस प्रेशर से बचेंगे, ये मानसिक रोग बढ़ावा दे रहे हैं, तो योग भी अच्छा लगेगा। चलते फिरते योग का अभ्यास करें, जब भोजन बना रहे हो तब स्वमान का अभ्यास कर लें तो चुस्ती आएगी धीरे धीरे। और जब योग में बैठें तो बिना चिंतन के न बैठें, आप संकल्प करो मुझे पांच स्वरूपों का अभ्यास करना है, ऐसे नहीं योग में बैठना है, नींद आ जाएगी। चिंतन, ज्ञान के चिंतन के साथ जब योग किया जाता है तो चुस्ती जल्दी ही आ जाती है। बाकी निद्राजीत बनना है, थोड़ा सा भोजन हल्का कर दो, नींद पूरी भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप बहुत कम नींद करें, 6 घंटे तो कम से कम नींद चाहिए ही। हल्के होंगे, योग अच्छा लगने लगेगा, चिंतन अच्छा होगा तो सवेरे भी अच्छा होगा, नींद भी हल्की हो जाएगी।
जी भाई जी, तो किसी ने एक लिखा है कि मैं अपने अंदर संपूर्ण पवित्रता को लाना चाहता हूँ, स्वप्न भी मेरे पवित्र रहें, क्या करें?
बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न बहुतों के प्रश्न आ गए इस एक प्रश्न में, कोई पूछते हैं कोई नहीं पूछते। पवित्रता हमारी एक सुंदर यात्रा है, हमारे वेदों में ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ा तप माना गया है, क्योंकि उनको तो इसमें जबरदस्ती कंट्रोल करना पड़ता है। कर्मेंद्रियों को वश करने के लिए हमारे सन्यासी आचार्य ऋषि मुनियों ने अनेक फिजिकल साधन बताए हैं, लेकिन अगर हम अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे, अगर हम पांच स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, योग 4 घंटे से अधिक होगा। जब मैं योग की बात करता हूं तो बैठने की नहीं, तो प्योरिटी बढ़ती जाएगी। सोने से पहले 15 मिनट आप लगाओ, 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, देवता थे सामने आ जाए, मैं आत्मा भी मूल रूप से परम पवित्र हूं, मैं इस देव देवी परम पवित्र ब्राह्मण, भगवान ने पवित्रता का वरदान दिया, फरिश्ता बनना है संपूर्ण पवित्र, याद दिलाएंगे अपने को अपनी प्योरिटी के बारे में। बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने ये ड्रिल कराई थी 25,000 की सभाओं में कई बार, जब तुम परमधाम में थे चलो वहां, बाबा भी ऐसा कहते थे चलो वहां, तुम्हारी प्योरिटी का तेज सबसे ज्यादा था। कहा 1 मिनट बैठ जाओ इस स्वरूप में, देव स्वरूप को देखो अपने, 1 मिनट चिंतन करो, मैं ऐसा निर्विकारी था, निर्विकारी देवी थी मैं, तो वो संस्कार आते जाएंगे। पानी चार्ज करके पिएंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इससे प्योरिटी बढ़ेगी। लेकिन याद रखना है, प्योरिटी को 1 साल में आपकी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस होता है तो उसको माइंड नहीं करना है, आगे बढ़ते चलना है।
जी, एक माता जी का प्रश्न है कि मैं 10 साल से ज्ञान में चल रही हूं, मेरे पति भी ज्ञान में थे, लेकिन कोरोना के टाइम मेरे पति जी अव्यक्त हो गए, उनके ऊपर हमने काफी पैसे खर्च किए, अभी मैं बहुत परेशान हो गई हूं, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, एकदम टूट गई हूं, ना रहे मेरे पति और ऊपर से 20 लाख का कर्ज, क्या करूं भाई जी, प्लीज मुझे कोई रास्ता बताओ।
हाँ देखिए, कोरोना ने तो बहुतों के परिवारों में यह हाल किया है। अब मनुष्य खर्च तो करेगा अपनों को जिलाने के लिए, कर्ज भी लेना पड़ेगा, किया आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब ये भावी थी। पहला काम आपको करना है, क्योंकि उनका जाने का समय था, वो आत्मा गई है, ज्ञान में थे तो बाबा के पास गई है, या बाबा के बच्चे भटकते नहीं हैं, इसलिए अपने चित्त को शांत करो, पहला काम। परेशानी में आप रहेंगी तो आप वो नहीं कर पाएंगी जो आप करना चाहती हैं। कर्ज से भी आपको मुक्त होना, आपके बच्चे भी होंगे उनको भी संभालना है, आपको अपने घर में पुनः शांति का खुशी का माहौल भी बनाना है, गमगीनी का माहौल नहीं, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका प्रभाव बहुत बुरा आता है जीवन पर, फ्यूचर पर। क्योंकि जिस घर में खुशी नहीं होती, जिस घर में प्रेम नहीं होता, वहां लक्ष्मी नहीं रहती। ध्यान देंगे, पहला काम आप ये करें, इस घटना को स्वीकार कर लें, यही होनी थी, चित्त को शांत करो, भगवान आपको मिला है इस खुशी को थोड़ा बढ़ाओ, पति नहीं रहा ठीक है, बहुत मोह होता है पति पत्नी का, लेकिन अब शिव बाबा साथ है, इसको थोड़ा बढ़ाओ और सवेरे उठकर थोड़ी ज्यादा साधना करो। मुझे एक माता फोन करती रहती है कहीं से, उसके जीवन में विघ्न चलते हैं, लेकिन वो बोलती रहती है कि विघ्न तो हैं पर मेरा पुरुषार्थ भी बहुत तेज है, मेरा सवेरे उठ के योग बहुत अच्छा लगता है, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, 5-6 घंटे योग कर लेती हूँ। तो मैं उसे क्या करता हूँ, विघ्नों को धन्यवाद दो, जिस दिन ये विघ्न हट जाएंगे तुम सोने लगोगी, विघ्न तुम्हें जगाने आए हैं, फायदा उठा लो। ये सच्ची बात है, जिनके जीवन में विघ्न नहीं वो मस्ती से सोते हैं 6 बजे तक, कुछ है ही नहीं, क्या करेंगे, बाबा को तो बाद में भी याद कर सकते हैं, क्या जरूरत पड़ी सवेरे उठ उठ के परेशान होने की, ऐसा सोचते रहते हैं लोग। तो सवेरे उठकर, ये बात मैंने आपको इसलिए सुनाई, विघ्न को अपनी लगन बढ़ाने का आधार बना लो, सवेरे उठकर याद करना। अभी आपको याद करना थोड़ा सा कठिन तो होगा, पर अब करना शुरू, मेरे साथ स्वयं भगवान है, इसलिए मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं। थोड़ा सा करना पड़ेगा खुले मन से, मैं बहुत भाग्यवान हूं, बहुत धनवान हूं, कर्ज से मुक्त हूं। 5 बार इसी क्रम से 5 बार ये संकल्प करेंगे, योग बढ़ाएंगे तो रास्ता मिल जाएगा
जी। तो कोई ने लिखा है कि मैं चाहता हूं कि निरंतर मेरी देही अभिमानी अवस्था बन जाए, दैहिक दृष्टि पूरी तरह से समाप्त हो जाए, उसकी
बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लक्ष्य है, बहुत अच्छा संकल्प है, यही होना चाहिए। इससे जीवन की अनेक समस्याएं भी नष्ट हो जाएंगी, प्योरिटी भी परफेक्ट हो जाएगी, संकल्प जो भटकते हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। हर घंटे में 2 बार आत्मिक स्वरूप को देखना और अपने को एक स्वमान देना, इसकी प्रैक्टिस कर लो। बाबा की जैसे प्रैक्टिस थी, बहुत ही सुंदर थी, मैं इस शरीर में ऐसे रहता हूं जैसे कि शरीर है ही नहीं। 6 मास आपको धुन लगानी पड़ेगी, मैं आत्मा यहां बैठी हूं, आंखों से देख रही हूं दूसरी आत्माओं को, ये आत्माओं का सुंदर खेल चल रहा है, ये 5000 साल का खेल अब एंड में आ गया है, अब ये रात बदल कर दिन होगी, हम घर चलेंगे। चिंतन प्लस प्रैक्टिस हर घंटे में 2 बार, 6 मास धुन लगाओ, किसी में छूट जाए कोई बात नहीं, दूसरी बार ज्यादा कर लो, सवेरे अच्छा कर लो, शाम को अच्छा कर लो, तो एक धुन लगाने से ये हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने हमें ये राजयोग की सहज साधनाएं सिखाई हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना ये तो हमारे वेदों शास्त्रों का अंतिम चरण है। हमारे पास एक बहुत अच्छे विद्वान आया करते थे किसी सेक्ट के, वो कहते थे मैं लोगों को कहता हूं जहां तुम्हारा सारा ज्ञान खत्म हो जाता है ना शास्त्रों का, वहां से ब्रह्मा कुमारियों का पहला पाठ शुरू होता है, और यही सत्य है। इसलिए सहज साधना, आत्मिक साधना, बस केवल धुन लगानी है, बिल्कुल सरल है, ज्ञान सरल हो गया। संसार में तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं है लोगों को, अभ्यास करेंगे अवश्य सफल होंगे।
किसी ने लिखा है कि भाई जी मैं दो सेंटरों के बीच उलझी हुई आत्मा हूं। दोनों सेंटर की बहनें चाहती हैं कि हमारे सेंटर पर आकर सेवा करें। एक सेंटर से मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं, दूसरे से निगेटिव। अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए जिससे
तीसरा ढूंढ लो कोई। दोनों को छोड़ देना। अच्छी सेवाधारी होंगी, अच्छे लोगों को सब खींचते हैं। बैलेंस रख सको तो दोनों तरफ चले जाया करो, अगर आप में दोनों को संतुष्ट करने की कला है, नहीं तो वहां जाओ जहां पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं।
जी, तो किसी ने कहा है कि मैं 15 वर्ष से ज्ञान में हूं, लेकिन जब भी मैं योग में बैठता हूं तो पुराने दृश्य, पुराने ख्यालात आते हैं।
ये एक बड़ी समस्या संसार के सामने है ही, एक दो के सामने नहीं, संसार के सामने। इलेक्ट्रॉनिक्स ने, इसमें सोशल मीडिया ने जरा आग में घी डाल देते हैं ना, ऐसा काम डाल दिया है, ऐसा काम कर दिया है। एक ही तरीका है इसको भुलाने का, 5 स्वरूपों का अधिक अभ्यास। नए सीन प्रिंट हो जाएंगे, पुराने डिलीट हो जाएंगे। बस यही एक सुंदर तरीका है। साथ में जोड़ देंगे ज्ञान का भी चिंतन होता रहे। चिंतन का अर्थ कोई नई पॉइंट निकालना नहीं होता, चिंतन का अर्थ होता है जो कुछ बाबा बता रहा है उसको स्मृति में लाना। तो धीरे धीरे नया प्रिंट होगा, पुराना डिलीट होगा।
साथ में ये भी लिख रहे हैं कि मैं सेंटर पर कभी कभी जाता हूं।
हाँ देखो, कभी कभी वालों को तो कठिनाई होगी। अभी स्टूडेंट आपके बच्चे कभी कभी पढ़ाई करें तो कैसा लगेगा। तो बाबा की भी नजर आप पे आ जाए, इसके लिए आप थोड़ा रेगुलर हो जाएं। बहुत प्राप्तियां हैं वहां। लॉकडाउन ने तो पहले ही सबका बंद कर दिया था, कभी आगे जाके और कुछ डाउन हो जाए और सारा ही बंद हो जाए, घर में ही बंद हो जाएं, सब हो गए थे ना अभी भी। इसलिए जब मौका मिला है इसका फायदा उठाओ, रेगुलर जाओ।
एक भाई का प्रश्न है कि मेरा अमृत वेला पावरफुल नहीं होता, तो अमृत वेले योग को हम पावरफुल कैसे बनाएं?
इस पे क्लासेज हैं बहुत सारी, मैंने भी कराई हैं, औरों ने भी कराई, क्योंकि एक विशाल, एक बड़ा सब्जेक्ट है। हर एक कितने बजे सोता है, नींद पूरी होती है या नहीं, नींद स्वप्न भरी है या गहरी है, खाना देर से खाया या थोड़ा जल्दी खाया, ब्रेन फ्रेश है या नहीं है, कर्म कैसे रहे हैं सारा दिन, अंतर्मुखी रहे हैं या बाह्यमुखी, गलतियां होती रही हैं या गलतियों से मुक्त रहे हैं, ये सब चीजें काउंट होती हैं अमृत वेला योग के लिए। इसलिए थोड़ा सारा दिन बीच बीच में अच्छा करते रहें, समय पर उठें, समय पर सोएं, थोड़ा सा घूम फिर के योग कर लें। अगर आपके पास छत है, छत पे घूम के, थोड़ी भी छत है तो वहां बैठ के घूम के योग कर लें। थोड़ा भी पैसेज है घर के आगे, उसमें घूम के योग करें, क्योंकि योग में रस उनको ही आता है। ये बात सभी अंडरलाइन करके नोट कर लें। एकांत योगियों के लिए वरदान है, पर वरदान उनके लिए है जिनका श्रेष्ठ चिंतन चलता है। योग में भी परम सुख और परम आनंद उन्हें मिलता है जिनका योग के समय अच्छा चिंतन है। सवेरे आप आते ही होंगे योग में, हम संकल्पों के साथ योग कराते हैं, ऐसे नहीं बैठा देते बैठ जाओ बाबा के पास। जितने अच्छे संकल्प होंगे, बाबा से मुझे क्या क्या मिला है, सवेरे उठ के लिस्ट बनानी शुरू कर दो, क्योंकि सवेरे के लिए ये परम आवश्यक है कि बहुतों का ब्रेन चलता नहीं है। मशीनरी जैसे डल हो गई हो, 6 घंटे सो के 5 घंटे सो के, बहुतों का ऐसा डल हो जाता है दिमाग, उसको एक्टिव करना ये परम आवश्यक होता है। इसलिए कुछ पढ़ लो, कोई अच्छा गीत सुन लो, बाबा से मुझे क्या क्या मिला इस चिंतन में आ जाओ, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही पीछे अव्यक्त मुरली में, सवेरे सवेरे स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ, कुछ स्वमानों को याद कर लो, बाबा ने मुझे क्या क्या टाइटल दिए, ऐसे अपने दिमाग को एक्टिव करेंगे सवेरे, तो सुंदर चिंतन के साथ योग अच्छा होने लगेगा। अच्छा करना जरूरी है, क्योंकि अमृत वेला अगर अच्छा है तो बहुत कुछ अच्छा रहता है।
एक बहन का प्रश्न है कि आज तक किसी दादी या दीदी या भाई संपूर्ण बना है क्या बाबा और मम्मा को छोड़कर?
अभी नहीं बना है।
अगर बना हो तो नाम बता दीजिए।
नहीं बना है कोई, लेकिन उल्यार दादी बनी है, जानकी दादी भी बनी है। आप कहेंगे इन्होंने फिर पुनर्जन्म क्यों लिया? कुछ आत्माओं को पुनर्जन्म तो मामा ने भी लिया है, कुछ महान आत्माओं का कर्म बंधन तो समाप्त हो गया था योग बल से, लेकिन स्थापना के महान कार्य के लिए बाबा ने उनको नया जन्म दिया है। उसमें उनका कर्मों का हिसाब किताब नहीं है, इसको बाबा के शब्दों में कर्म बंधन नहीं है, कर्म संबंध है। उनके महान कार्यों के लिए वो आत्माएं गई हैं।
जी, किसी ने कहा कि जब मैं पहले ज्ञान में आया था तो बाबा को प्रत्यक्ष करने का बहुत उमंग था, लेकिन अब वो उमंग उत्साह नहीं रहा। मुझे पता भी है कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है, लेकिन वो गलती पकड़ में नहीं आ रही है।
देख लो, मैं 2-4 बातें बता देता हूं, अगर वो आपकी हो ना हो तो कोई बात नहीं। किसी को धन कमाने का उमंग उत्साह बढ़ जाता है, किसी को मान सम्मान ज्यादा मिले ये उमंग उत्साह बढ़ जाता है, किसी को संसार में मेरा नाम हो, मेरे बच्चे ऐसे ऐसे बन जाएं, समाज में मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं, यह उमंग उत्साह रहता है, तो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट हुआ है। फिर से योग अभ्यास बढ़ाओ, अपना स्वमान बढ़ा दो और संकल्प क्रिएट करो उमंग उत्साह के, कि अब अंतिम समय आ रहा है और समय की ये मांग होगी। बाबा को प्रत्यक्ष करना छोड़ो, समय की ये मांग होगी कि हम दुखियों के दुख दूर करें, हम भयभीत आत्माओं को निर्भय बनाएं, हम भक्तों के रक्षक बने। याद रखना है आपको ये, जैसे शिव बाबा ने हमारी रक्षा की है अपनी शरण में लेकर, हमें भक्तों की रक्षा करनी है। तो हम अब से और जब तक खेल समाप्त हो संसार को देने वाले बन जाएं, ये चिंतन अपने अंदर लाओ, तो देंगे वही जिनके पास खजाने भरपूर होंगे। तो मुझे खजानों से स्वयं को भरपूर करना है। खजानों में ज्ञान का खजाना भी है, खुशी का, शक्तियों का, शांति का, दुआओं का, श्रेष्ठ संकल्पों का, ये सब खजाने हैं हमारे। ऐसी उमंग उत्साह फिर से क्रिएट करो। बाकी बुद्धि जिधर भी चली गई, इच्छाओं के पीछे भाग गई, कामनाओं ने जकड़ लिया है, सांसारिक प्राप्तियों के पीछे चली गई है, उसे धीरे धीरे अपने को हटाओ।
योग के संदर्भ में 2-3 प्रश्न हैं। किसी ने कहा कि योग करते समय अपने मन में क्या बोलना है?
रोज तो सवेरे यही सिखा रहे हैं।
और साथ में ये भी है कि कभी कभी बाबा में संशय आ जाता है।
क्या आ जाता है? ये तो मेरा बाबा नहीं है, कोई और होगा। क्या आता है वो तो लिखा नहीं, कि बाबा आया है या नहीं आया, ये ज्ञान बाबा ने दिया या किसी और ने। हमारे निश्चय का आधार हमारे श्रेष्ठ अनुभव ही होते हैं। इसलिए सवेरे और शाम अच्छा योग करें, आपको जो सुंदर अनुभव होंगे अनुभव आपका फाउंडेशन बनेगा आपके निश्चय का, क्योंकि संशय से बहुत ज्यादा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है। आप सबको याद रहे कि परिस्थितियों के समय हमें बाबा की मदद नहीं मिलेगी, इसलिए जैसे भी हो अपने संशय को खत्म करके निश्चय को मजबूत करें।
जी, एक प्रश्न किसी बहन ने लिखा है कि मैं लगातार केवल एक घंटे तक ही योग में बैठ पाती हूं, मैं अपने योग के समय को बढ़ाना चाहती हूं परंतु ऐसा नहीं हो पाता।
तो बधाई हो,
क्या करें जो हमारा योग।
बधाई हो आपको, एक घंटा बहुत अच्छा समय है। फिर क्यों नहीं बैठ पाती? बैठना भी नहीं चाहिए। आप कहेंगे मैंने ऐसी खराब बात क्यों बोल दी। ब्रेन की शक्तियां यूज होके खत्म हो जाती हैं। ब्रेन चाहता है पुनः फ्रेश होना। लंबा समय बैठने से आपको बैक पेन भी बढ़ सकता है, शरीर कहता है छोड़ो उठो। इसलिए मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, पिछले 53 इयर्स से मैं यहां हूं, मैंने बहुतों को देखा, बैठकर योग करने वाले आज तक योगी नहीं बने हैं। योगी वो बने हैं जो कर्म योग करते हैं। योगी वो बनते हैं जिनके जीवन में नम्रता, सहनशीलता, प्रेम, सद्भावनाएं, श्रेष्ठ स्वमान, निरहंकारिता, ये सब आती हैं। किसी ने, कोई व्यक्ति किसी से चिढ़ता है, अभी की बात बताऊं, और वो दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छा योग करता है बैठ के, लेकिन उसके जीवन में नम्रता नहीं आई, तो चिढ़ने वाला व्यक्ति कह रहा था, मुझे नहीं कह रहा था, कह रहा था, मैंने भी सुना, कह रहे ऐसी तपस्या तो असुर भी करते थे ना, ब्रह्मा जी से वरदान ले लेते थे, ऐसी तपस्या का क्या फायदा जिसमें जीवन सुंदर न बने, बोल अच्छे न बोलने सीखे हो, अहंकार रहता हो। तो मैं भी सुना, मैंने कहा बात तो अच्छी कहता है ये, महादेव जी से भस्मा सुनने वरदान ले लिया तपस्या करके, जिसके सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो गए हो जाएगा। कहा अच्छा लो, पहले तुम्हारा ही नंबर है, देख लेता हूं तुम कितने पानी में हो। तो एक घंटा बहुत है योग करना, अगर ज्यादा ही उमंग है बैठने की तो चार बार बैठ जाओ, लेकिन लगातार नहीं। ध्यान देना मेरी बात, अगर आप समझ सको तो बड़ा कल्याण होगा। क्यों? दो चार कुमारों ने गलती की, बाबा कहते निद्रा जीत बनना, चाय का थर्मस भर लिया, जब नींद आए चाय पिए, योग करें, एक तो पागल हो गया। दूसरे कुमार ने कहा ये बड़े बड़े लोग हैं ना, इनको कुछ आता जाता नहीं, 8 घंटे बैठ के योग करना है। बैठ के योग करने लगा, 4-5 मास किया। उसके बाद कमर ने ऐसा जवाब दे दिया कि सदा के लिए बेड पर आ गया। डॉक्टर ने कहा उठना नहीं है। परिवार वालों ने कहा अब योग करोगे तो लेटे लेटे की पिटाई होगी। भूल गए बेचारे ज्ञान योग। इसलिए बाबा क्या कहता है, संतुलन के भूलना नहीं है। कई माताएं मुझे तो बताया करती है, हंसी भी करती है बेचारी, कि भाई मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं योग में बैठती हूँ, बच्चे जब उठती हूँ बच्चे मजाक करते हैं, मम्मी ध्यान तो बहुत करती हो पर गुस्सा नहीं छोड़ा अब तक, मुझे बड़ी लज्जा आती है। तो कहती मेरे बच्चे तो मेरे गुरु बन गए हैं। कबड़े अच्छे, ऐसे गुरु किसको, सबको मिले जो सावधान करें। ध्यान देना इन चीजों पर।
जी भाई जी, तो किसी ने ये भी लिखा है कि जब हम कर्म करते हुए याद करते हैं तो उस समय भी मेरी बुद्धि भटक जाती है, अब क्या करें हम।
ठीक है, करते रहो, बुद्धि भटकना धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसमें मैंने 2-3 चीजें आपको कही, केवल योग नहीं, जिसकी बुद्धि ज्यादा भटकती है वो अशरीरी होने का और स्वमान का ही ज्यादा अभ्यास करें। मैंने प्रयोग कराए लोगों से एक्सपेरिमेंट के लिए। कोई व्यक्ति, लड़का, कुमार, बहुत परेशान, बुद्धि स्थिर ही नहीं है, 1 मिनट योग नहीं लगता, मैंने उसे कहा आज सारा दिन 1000 बार आपको याद करना है मैं आत्मा हूं और कुछ नहीं। 1000 बार माना, 1 घंटे में कम से कम 50 बार करेगा, करता हूं। धुन लगा दी उसने। मैंने कहा भूल जाना, अनुभव होगा, कुछ और होगा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यही करते रहना। शाम को जब आया ना, उसका चेहरा चमक रहा था। क्या हुआ? मजा आ गया आज तो। जिनको व्यर्थ बहुत चलता है वो अशरीरीपन और स्वमान की प्रैक्टिस की धुन लगा दो 15 दिन, फिर बुद्धि शांत एकाग्र हो जाएगी
जी। तो किसी ने लिखा है कि भाई जी, मैं ज्ञान में आने से पहले अनजान में बहुत गलत काम कर लिए हैं, परिवार में, लौकिक संबंधों में, धंधे आदि में मुझसे बहुत गलत हो गए हैं, तो उसका हिसाब किताब?
देखिए, उसका यही है कि हमें जादी जानकी कहा करती थी कि शरीर से अगर बहुत पाप किए हैं, अब इस शरीर से यज्ञ की सेवा बहुत कर दो, मदद मिल जाएगी। जो कुछ भी किया है विद रियलाइजेशन, महसूस करते हुए, लिख दो बाबा के नाम, बाबा के रूम में रख दो, दे दो बाबा को, ले लो। वो ज्ञान काल में हुआ, लेकिन अगर आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल देंगे तो आपके द्वारा की गई गलती आपके लिए वरदान बन जाएंगी। वो गलती जो बहुत बड़ी भी हो, लेकिन सदा के लिए हम गलती से मुक्त हो जाएं, तो वो गलती श्राप नहीं रहती, वरदान साबित होती है। इसलिए पास्ट को बाबा को लिख कर दे दो, भूलो, और अपने जीवन को ऐसा सुंदर बनाओ कि आपको भी लगे जीवन तो ये है, वो जो हो गया पूरा हो गया, वो ज्ञान वश हुआ है, ऐसा आप करेंगे
जी। एक कुमार हैं, वो लिख रहे हैं कि मेरे घर वाले शादी के लिए बहुत फोर्स करते हैं, मैं समझाता हूं वो समझते नहीं है, रोने लगते हैं, फिर मेरा मन भी बहुत दुखी होता है, तो कैसे हम उनको समझाएं?
कुमार कुमारियों की ये समस्या तो कई जगह रहती है। माताएं भी चाहती हैं बहू का मुंह देखें, और फिर कहती हैं ऐसी बहू है, इसका मुंह ही नहीं देखना चाहती, इसे हटाओ मेरे पास से। मेरे पास भी आती हैं, मैंने कहा अब अच्छी तरह देख लो ताकि दोबारा इच्छा ना हो कि बहू का मुंह देखना है। अब माँ बाप की इच्छा होती है उसके बच्चे शादी करें, वो निश्चिंत हो जाए। कई एक ही हैं कुमार, उनके लिए थोड़ी ज्यादा कठिनाई है। कईयों को 2-4 भी हैं, फिर भी माँ बाप चाहते हैं वो निश्चिंत हो, इन्हें शादी वादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। लेकिन कुमारों को विशेष रूप से एक तो अपनी प्योरिटी को बहुत अच्छा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी इमोशनल बात होती है, किसी की मां रो रही हो और वो कहे मैं तो पवित्र रहूंगा, तो उसका भी तो दिल पिघल ही जाता है थोड़ा। माँ से तो विशेष प्यार रहता ही है अधिकतर बच्चों का। सवेरे उठकर अच्छा योग कर लें, संकल्प करें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बहुत भाग्यवान हूं, ये आत्माएं मेरे माँ बाप बहुत महान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, ये मेरे गुड फ्रेंड हैं, मेरे सहयोगी हैं। 5 बार इसी तरह तो उनका माइंड चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बहुत सफल हुए हैं। माँ बाप बहुत परेशान होते थे, लेकिन फिर खुश हो गए, सोचने लगे हमारे घर में एक देवता ने जन्म लिया है, हम इसे शादी वगैरह के चक्रव्यूह में नहीं उलझाना चाहते। परिवर्तन हो गया विचारों में, हमारे घर में एक महान आत्मा है, इसे हम महान ही रहने देना चाहते हैं। तो आपके ये संकल्प, आपकी भावनाएं उनको आपका सहयोगी बना देंगे
जी। किसी ने लिखा है कि हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जो हमारे जीवन से सारे विघ्न, समस्याएं, कोई बीमारी भी ना आए, माना एक ही पुरुषार्थ में सारा कुछ समाया हुआ हो।
वाह, एक इंजेक्शन लगे सारे रोग दूर, बहुत अच्छी बात है, लक्ष्य तो बहुत सुंदर है। देखो उत्तर तो मेरे पास है, जितना सुंदर योग होगा। हम ये नहीं कहेंगे बीमारी आएंगी नहीं, हमने कोई नहीं देखा आज तक किसी को बीमारी नहीं आई। शंकराचार्य को बड़ा कष्ट हुआ, स्वामी विवेकानंद को बहुत बीमारियां थी, हमने अपनी महान आत्माओं को भी देखा सब बीमारियों से गुजरे, लेकिन जो श्रेष्ठ योगी हैं उनकी बीमारियां उनको बीमारी लगती नहीं है। वो माइंड के रूप से मेंटली बहुत हेल्दी रहते हैं। साक्षी हो के उस कर्म भोग को कर्म योग से पूरा कर देते हैं। रही बात विघ्न ना है, हमारा जीवन जीने का तरीका सहज भाव का हो, हम किसी के जीवन में विघ्न डालें भी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर विघ्न आते हैं अपने योग को और पावरफुल बना दें, योग शक्ति से विघ्नों को नष्ट करेंगे, विघ्न आपकी स्थिति को नष्ट न करें, इतना अगर सावधान रहेंगे तो जीवन बहुत सुंदर रहेगा। बाकी 63 जन्मों का हिसाब किताब है, वो भी तो कुछ है ना, उसको भी हमें चुकतू बनना है, थोड़ा बहुत आते भी रहेगा। लेकिन अगर हमारा योग अच्छा है, ज्ञान का बल है, मैं ऐड कर रहा हूं योग के साथ ज्ञान का बल, ज्ञान की पॉइंट्स को हम यूज करते हैं तो हम पार होते जाएंगे।
दो लोगों का एक जैसा ही प्रश्न है, वो लिख रहे हैं कि ज्ञान योग में रुचि नहीं रहती और उमंग नहीं आता, वही रोज मुरली वही योग, तो ऐसा कुछ नवीनता क्या नवीनता करें जो ज्ञान योग में रुचि उत्पन्न हो।
हमने इस पर योग के बहुत सारे अभ्यास बताए हैं, YouTube पे आप देख सकते हैं। बाबा भी कहता है योग को मनोरंजन बनाओ, लेकिन ज्ञान योग में रस नहीं आता, इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आत्मा कर्मेंद्रियों के रसों में लिप्त है। एक ही रस मिलेगा, कर्मेंद्रियों का रस या ईश्वरीय रस, एक छूटेगा। इसलिए कर्मेंद्रियों के रसों को चेक करो, उन्हें धीरे धीरे कम करो तो ईश्वरीय रस सुख उमंग उत्साह बढ़ती जाएगी
जी। तो किसी ने लिखा है, माता है कि मेरे बच्चे बड़े चिड़चिड़े हो रहे हैं और मेरा परिवार भी बहुत मनमानी कर रहा है, मेरे युगल ज्ञान में चलते थे वो भी संशय में आ गए हैं, तो मैं क्या करूं कि वो फिर से ज्ञान में आ जाएं और परिवार की जो टेंशन है वो खत्म हो जाए।
आपकी स्थिति श्रेष्ठ बनती जाएगी तो परिस्थितियां बदलती जाएंगी, एक ही दवाई है। वो चिड़चिड़े हो रहे, आप भी चिड़चिड़ी हो गई तो बिगड़ा खेल। आपके पति ने ज्ञान छोड़ दिया, आप भी छोड़ने की तैयारी करने लगी तो दोनों जहान से गए। इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, आप और मजबूत हो जाओ, आपके योग के वाइब्रेशंस सब कुछ बदल सकते हैं। अपने घर में कम से कम 5 बार बाप दादा का आह्वान करो, 5 बार उसी टाइम अभ्यास करना, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। अंग अंग से किरणें फैल रही हैं पूरे घर में, एक ही टाइम कर सकते हैं दोनों अभ्यास। बाबा का आह्वान, उसकी तेजस्वी किरणें पूरे घर में फैल गई हैं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मुझसे निकली हुई किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, सवेरे उठकर सभी को आत्मा देखकर अच्छे संकल्प भेजो, ये सभी अच्छी आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, हमारे घर के कुल के दीपक हैं, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आपके वाइब्रेशंस उन्हें अच्छा बना देंगे
जी। तो किसी ने लिखा है कि बाबा कहते हैं आंख खोल करके याद करो, लेकिन जब मैं आंख बंद करके याद में बैठता हूं तो मुझे अच्छा लगता है।
चलो, लंबे समय की प्रैक्टिस होगी, सन्यासी रहे होंगे पूर्व जन्म में, थोड़ा आंख बंद करके कर लिया करो, लेकिन कर्म में तो खोल के ही करना पड़ेगा। खोलने की प्रैक्टिस अच्छी है, क्योंकि आंखों से हमारे पवित्र वाइब्रेशन संसार में फैलते हैं, आपके घर में फैलते हैं, इसलिए बाबा ने आंख खोलने की विधि बताई है। इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ाओ, आंख बंद कर लो फिर थोड़ी खोल लो फिर बंद कर लो, फिर खोल लो, धीरे धीरे बंद खोल बंद खोल, हाँ धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी।
तीन चार प्रश्न हैं जो एक ही जैसे हैं, उनका है कि हम बाबा के साथ डीप फीलिंग कैसे करें जिससे हमारा याद
प्रश्न तो बहुत अच्छा है। इसके लिए चाहिए एकाग्रता। जितनी अच्छी एकाग्रता होगी फीलिंग्स गहरी होती जाएंगी। प्रैक्टिस योग के चार पिलर मैं आपके बनवा देता हूं। वो पिलर नहीं जो चित्रों में हैं, थोड़े बदल देते हैं, वो नयों के लिए हैं। एक पिलर है मनन, दूसरा पिलर है स्वमान, तीसरा पिलर है बार बार अभ्यास, और चौथा पिलर है आत्मिक दृष्टि। सारा दिन ये अभ्यास करेंगे, एकाग्रता बढ़ाएंगे, अनुभूति गहरी होती जाएगी। ओम शांति।
थैंक यू, धन्यवाद। भाई साहब ने अपना बहुमूल्य समय दिया, भाई जी का बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद करते हैं, और यहीं पर हम क्वेश्चन आंसर का सेशन पूरा करते हैं, क्योंकि अभी आपका बहुत सुंदर सेशन 6 से 8 बजे तक विशेष योग अनुभूति, बाप दादा से मिलन की अनुभूति वो होगा। तो अभी यहाँ पर हम 3 मिनट बाबा को याद करेंगे, उसके बाद आज का प्रोग्राम पूरा करते हैं।